दानियेल की पुस्तक जे संख्या 6। यहोयाकीम।
दानियेल और प्रकाशित वाक्य की पुस्तकें एक ही पुस्तक है, उसी अर्थ में जैसे बाइबल एक ही पुस्तक है जिसमें पुराना नियम और नया नियम सम्मिलित है।
परमेश्वर के पुत्र के रूप में यीशु के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान का इतिहास पुराने नियम में निहित प्रमाणों के बिना पूर्णतः सिद्ध नहीं किया जा सकता। मसीह पुराने नियम में उतनी ही स्पष्टता से प्रकट है जितनी नए नियम में। एक आने वाले उद्धारकर्ता की गवाही देता है, जबकि दूसरा उस उद्धारकर्ता की गवाही देता है जो भविष्यद्वक्ताओं ने जिस प्रकार भविष्यवाणी की थी उसी प्रकार आ चुका है। उद्धार की योजना को समझने के लिए पुराने नियम के शास्त्रों को भलीभांति समझना आवश्यक है। भविष्यद्वक्ताओं के अतीत से आने वाली महिमामय ज्योति ही मसीह के जीवन और नए नियम की शिक्षाओं को स्पष्टता और सौंदर्य के साथ उजागर करती है। यीशु के चमत्कार उनकी दिव्यता का प्रमाण हैं, परंतु कि वे संसार के उद्धारकर्ता हैं, इसके सबसे प्रबल प्रमाण पुराने नियम की भविष्यवाणियों की तुलना नए नियम के इतिहास से करने पर मिलते हैं। यीशु ने यहूदियों से कहा, पवित्र शास्त्रों की खोज करो, क्योंकि तुम समझते हो कि उनमें तुम्हारे लिए अनंत जीवन है और वे ही मेरी गवाही देते हैं। उस समय पुराने नियम के सिवा और कोई शास्त्र अस्तित्व में नहीं था, इसलिए उद्धारकर्ता की ये आज्ञा स्पष्ट है। स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी, खंड 3:211।
मसीह कौन है और क्या है, इसका सबसे ठोस प्रमाण तब मिलता है जब पुराने नियम की भविष्यवाणियों की तुलना नए नियम के इतिहास में उन भविष्यवाणियों की पूर्ति से की जाती है। इसी प्रकार दानियेल और प्रकाशित वाक्य की पुस्तकों के संबंध में भी।
प्रकाशित वाक्य में बाइबल की सभी पुस्तकें मिलती और समाप्त होती हैं। यहाँ दानियेल की पुस्तक का पूरक है। एक भविष्यवाणी है, दूसरी प्रकाशना है। प्रेरितों के काम 585।
शब्द कॉम्प्लीमेंट का अर्थ है किसी चीज को परिपूर्ण करना। पुराने नियम की भविष्यवाणियों की पूर्ति मसीह की दिव्यता का सबसे प्रबल प्रमाण थी। दानियेल की पुस्तक की भविष्यवाणियों की दिव्यता का सबसे प्रबल प्रमाण उन भविष्यवाणियों की वो पूर्ति है जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में दर्शाई गई है। दानियेल की भविष्यवाणियां प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जारी रहती हैं और वे अंतिम दिनों में परिपूर्णता तक पहुंचाई जाती हैं, जब यीशु मसीह के प्रकाशित वाक्य की मुहर खोली जाती है।
प्रकाशित वाक्य एक मुहरबंद पुस्तक है, परंतु ये एक खुली हुई पुस्तक भी है। इसमें वे अद्भुत घटनाएं दर्ज हैं जो इस पृथ्वी के इतिहास के अंतिम दिनों में घटित होने वाली हैं। इस पुस्तक की शिक्षाएं स्पष्ट और सुस्पष्ट हैं, वे न तो रहस्यमयी हैं और न ही असमझनीय। इसमें वही भविष्यवाणी की श्रृंखला उठाई गई है जो दानियेल में है। कुछ भविष्यवाणियों को परमेश्वर ने दोहराया है और इस प्रकार ये दर्शाया है कि उन्हें महत्व दिया जाना चाहिए। प्रभु वे बातें नहीं दोहराते जिनका कोई विशेष महत्व नहीं होता। मैन्युस्क्रिप्ट रिलीजेस, खंड 9:8।
यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के तीसरे वर्ष में बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर यरूशलेम पर आया और उस पर घेरा डाल दिया। दानियेल 1:1।
दानियेल की पुस्तक की पहली आयत जब ठीक से विचार किया जाए तो भविष्य सूचक जानकारी का अपार भंडार समेटे हुए है। हम अपनी चर्चा की शुरुआत यहोयाकीम से करेंगे। यहोयाकीम यहूदा के अंतिम तीन राजाओं में पहला था, इसलिए वो पहले स्वर्गदूत के संदेश का प्रतिनिधित्व करता है। उसका पुत्र यहोयाकीन, जिसे यकन्याह या कन्या भी कहा जाता था, दूसरे स्वर्गदूत के संदेश का प्रतिनिधित्व करता था। यहोयाकीन के बाद सिदकिया आया, जो यहूदा के इन अंतिम तीन राजाओं में सबसे अंतिम था। सिदकिया तीसरे स्वर्गदूत के संदेश का प्रतिनिधित्व करता है। कई भविष्य सूचक साक्ष्य ये पुष्टि करते हैं कि यहोयाकीम पहले स्वर्गदूत के संदेश का प्रतीक है। इन प्रमाणों को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये स्पष्ट करता है कि दानियेल के पहले अध्याय की पहली आयत पहले स्वर्गदूत के संदेश की ओर संकेत करती है, और ये तथ्य एक लंगर के समान है जिसके कारण पहले अध्याय को प्रकाशित वाक्य 14 के पहले स्वर्गदूत के संदेश के रूप में समझा जा सकता है। हम दो इतिहास से आरंभ करेंगे।
और जो तलवार से बच निकले थे उन्हें वो बाबुल ले गया, जहां वे उसकी और उसके पुत्रों के दास बने रहे, जब तक फारस के राज्य का राज्यकाल आया। यहोवा के उस वचन को पूरा करने के लिए जो यिर्मयाह के मुख से कहा गया था कि देश अपने सप्तों का विश्राम पा ले, क्योंकि जितने समय तक वो उजाड़ पड़ा रहा उसने सप्त माना ताकि 70 वर्ष पूरे हों। 2 इतिहास 36:20-21।
बाबुल में 70 वर्षों की बंधुआई इसलिए हुई कि भूमि अपने सप्तों का वो विश्राम पा सके जो लेव्य व्यवस्था 25 के अनुसार पूरे नहीं किए गए थे। सप्त वर्षों के 70 वर्ष कुल 490 वर्षों के बराबर होते हैं, जिनमें प्राचीन इज़राइल ने लेव्य व्यवस्था 25 के निर्देशों की उपेक्षा की थी। बंधुआई के 70 वर्षों से पहले 490 वर्षों तक विद्रोह चलता रहा। उन 490 वर्षों के अंत में 3 राजाओं को नबूकदनेस्सर के अधीन कर दिया जाएगा। 70 वर्षों के निर्वासन के अंत में प्रभु ने कुरूश को उठाया, जो उन 3 राजाओं में पहला था जिन्होंने ये फरमान दिया कि इज़राइल लौटकर यरूशलेम का पुनर्निर्माण कर सकता है। अर्तक्षत्र उन तीनों में तीसरा था और उसने 657 ईसा पूर्व में तीसरा फरमान जारी किया। तीसरे फरमान से दानियेल की पुस्तक के अध्याय 8:14 में बताए गए 3,200 वर्षों की अवधि का आरंभ हुआ। 70-98 में रोश की पहली समाप्ति हुई, दानियेल की पुस्तक की मुहर खोली गई और 3 स्वर्गदूतों में से पहला आ पहुंचा। तीसरा स्वर्गदूत 22 अक्टूबर 1844 को आ पहुंचा। यहूदा के अंतिम 3 राजाओं का सामना नबूकदनेस्सर से हुआ और यहोयाकीम के बंदी बनाए जाने पर 70 वर्षों की अवधि आरंभ हुई। यह अवधि तब तक जारी रही जब तक बाबेल नष्ट नहीं हो गया और वो सेनापति कुरूश जिसने बाबेल को नष्ट किया और जो शीघ्र ही उसके बाद राजा बना ने 3 फरमानों में से पहला जारी किया। तीसरे फरमान से सांझ और भोर की वो भविष्यवाणी शुरू हुई जो 3 स्वर्गदूतों में से तीसरे के आगमन के साथ समाप्त हुई। मसीह हमेशा अंत को आरंभ से जोड़ते हैं। 70 वर्षों की शुरुआत यरूशलेम पर नबूकदनेस्सर के पहले आक्रमण के साथ हुई। 70 वर्षों का अंत बाबुल के विनाश से चिन्हित हुआ। यरूशलेम का अंतिम और पूर्ण विनाश उन 3 राजाओं में से तीसरे के समय आया जिन तीनों पर नबूकदनेस्सर ने आक्रमण किया था। यरूशलेम का विनाश क्रमिक था, इस अर्थ में कि उन सब पर नबूकदनेस्सर ने आक्रमण किया था। अंतिम 3 राजा एक ही भविष्य सूचक प्रतीक का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे 3 फरमानों के प्रतिरूप थे जो सब मिलकर एक ही प्रतीक थे, जैसे 2300 दिनों के अंत में 3 स्वर्गदूत एक ही प्रतीक थे।
एज़रा के 7वें अध्याय में वो राजाज्ञा पाई जाती है, 12:26। अपने सर्वाधिक पूर्ण रूप में वो 166 ईसा पूर्व में फारस के राजा अर्तक्षत्र के द्वारा जारी की गई थी, परंतु एज़रा 6:14 में कहा गया है कि यरूशलेम में यहोवा का भवन, कुरूश और दारयावेश और फारस के राजा अर्तक्षत्र की आज्ञा, हाशिए में राजाज्ञा के अनुसार बनाया गया था। इन तीनों राजाओं ने उस राजाज्ञा का आरंभ करने, उसे पुनः पुष्टि देने और उसे पूर्ण करने के द्वारा उसे उस सिद्धता तक पहुंचाया, जिसकी भविष्यवाणी के अनुसार 33 से लगभग 70 वर्षों के आरंभ को चिन्हित करने के लिए आवश्यकता थी। 166 ईसा पूर्व को, अर्थात उस समय को जब वो राजाज्ञा पूर्ण हुई, उस आज्ञा के तिथि मान लेने पर 70 सप्ताहों के विषय में भविष्यवाणी की प्रत्येक विशिष्ट बात पूरी हुई देखी गई। द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी 364।
सिस्टर व्हाइट बताती है कि भविष्यवाणी की पूर्णता के लिए 3 आदेश आवश्यक थे। वो उनके आपसी संबंध को परिभाषित करती हैं और ऐसा करते हुए इब्रानी शब्द सत्य की व्याकरणिक विशेषताओं की पहचान करती हैं। वो कहती हैं कि पहले आदेश पहले ने आरंभ किया, दूसरे आदेश ने पुनः पुष्टि की और तीसरे आदेश ने 70 सप्ताह संबंधी भविष्यवाणी में उल्लिखित हर बात को पूरा किया। इब्रानी शब्द सत्य इब्रानी वर्णमाला के प्रथम, 13वें और अंतिम अक्षरों के संयोजन से बनता है। पहले आदेश ने आरंभ किया, दूसरे ने पुनः पुष्टि की और अंतिम आदेश ने भविष्यवाणी को पूरा किया। इन 3 आदेशों में अल्फा और ओमेगा की छाप निहित है और वे बाबुल की बंधुआई के 70 वर्षों की भविष्यवाणी के अंत में पूरे हुए, हालांकि 3रा आदेश उन 70 वर्षों के समाप्त होने के काफी बाद आया। ये 3ों आदेश क्रमिक थे और यद्यपि वे 3 आदेश थे, फिर भी वे एक ही भविष्यवाणी का प्रतीक थे। पहला स्वर्गदूत 1798 में आया, दूसरा स्वर्गदूत 1844 के वसंत में आया और तीसरा स्वर्गदूत 22 अक्टूबर 1844 को आया। वे तीनों स्वर्गदूत एक भविष्य सूचक प्रतीक हैं जो प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 के अनंत सुसमाचार का प्रतिनिधित्व करते हैं।
पहला और दूसरा संदेश 1843 और 1884 में दिए गए थे और हम अब तीसरे संदेश की घोषणा के अधीन हैं, परंतु इन तीनों संदेशों की घोषणा अभी भी की जानी है। सत्य की खोज करने वालों को उन्हें दोहराना आज भी उतना ही आवश्यक है जितना पहले कभी था। कलम और वाणी द्वारा हमें ये घोषणा करनी है उनके क्रम को और उन भविष्यवाणियों के अनुप्रयोग को दिखाते हुए जो हमें तीसरे स्वर्गदूत के संदेश तक ले आती हैं। पहले और दूसरे के बिना तीसरा हो ही नहीं सकता। ये संदेश हमें विश्व को प्रकाशनों में, प्रवचनों में देने हैं, भविष्यवाणी के इतिहास की रेखा में वे बातें दिखाते हुए जो हो चुकी हैं और जो होने वाली हैं। चयनित संदेश पुस्तक 2, 10 और 5।
यहूदा के अंतिम तीन राजा एक प्रतीक थे क्योंकि वे सभी बाबुल के राजा द्वारा विभिन्न स्तरों की अधीनता में लाए गए थे। यहूदा के अंतिम तीन राजा, तीन फरमान और तीन स्वर्गदूत, यद्यपि स्पष्ट रूप से तीन हैं, भी एक ही भविष्यवाणी के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। आखिरी तीन राजा उस भविष्यवाणी संदर्भ का हिस्सा है जिससे बंदीवास के 70 वर्षों की भविष्यवाणी प्रारंभ होती है और इस प्रकार वे उस आरंभ का भाग बनते हैं जो बंदीवास के 70 वर्षों के अंत को दर्शाता है। बंदीवास की शुरुआत तीन राजाओं को क्रमशः अधीन करने से हुई और इसका अंत राज्य तथा उसकी राजधानी के विनाश पर हुआ। भविष्यवाणी का अंत बाबुल राज्य और उसकी राजधानी के विनाश को चिह्नित करता है जो तीन क्रमिक फरमानों के आगमन का भी संकेत देता है। 2300 वर्षों की भविष्यवाणी की शुरुआत तीन क्रमिक फरमानों से चिह्नित है और यह 2300 वर्षों की भविष्यवाणी के उस अंत को दर्शाती है जो तीन क्रमिक संदेशों से मिलकर बना है।
तीन स्वर्गदूत और उनके अपने तीन संदेशों को तीन राजाओं और उनके तीन क्रमिक फरमानों द्वारा प्रतीकित किया गया था। जिन तीन राजाओं ने अपने अपने तीन फरमानों की घोषणा की थी वे तीन क्रमिक राजाओं द्वारा प्रतीकित किए गए थे जिन्होंने प्रत्येक ने नबुकदनेस्सर के विरुद्ध विद्रोह का अपना संदेश प्रस्तुत किया था। विद्रोह के तीन संदेशों ने तीन फरमानों का प्रतीकी किया और वे फरमान आगे चलकर तीन संदेशों का प्रतीक बने। उनमें से एक 70 वर्षों की भविष्यवाणी का आरंभ करता है जो आगे चलकर 2300 वर्षों की भविष्यवाणी के आरंभ पर समाप्त होती है जो 1844 में तीसरे स्वर्गदूत के आगमन पर समाप्त होती है। भूमि को अपने सप्त का आनंद लेने के लिए जो 70 वर्ष दिए गए थे उन्हें 22 अक्टूबर 1844 से अलग नहीं किया जा सकता।
यहोयाकीम कुरूश के पहले फरमान का तथा प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 के पहले स्वर्गदूत के संदेश का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अतिरिक्त तीन गवाह, यहूदा के अंतिम तीन राजा, तीन फरमान और तीन स्वर्गदूतों के संदेश यहोयाकीम के प्रतीक के विषय में सटीक जानकारी प्रदान करते हैं क्योंकि तीनों स्वर्गदूतों का भविष्यवाणी संबंधी इतिहास दैवीय प्रेरणा द्वारा बहुत सावधानी से चिह्नित किया गया है। इन तीनों संदेशों का पहले एक ऐतिहासिक आगमन होता है और उसके बाद एक ऐतिहासिक शक्ति वृद्धि होती है।
पहला स्वर्गदूत 1798 में आया और 11 अगस्त 1840 को दिन प्रति वर्ष सिद्धांत की पुष्टि के साथ वो सशक्त हुआ।
1840 के वर्ष में भविष्यवाणी की एक अन्य उल्लेखनीय पूर्ति ने व्यापक रुचि उत्पन्न की। 2 वर्ष पूर्व मसीह के द्वितीय आगमन का प्रचार करने वाले अग्रणी उपदेशकों में से एक जोसिया लिच ने प्रकाशित वाक्य 9 की एक व्याख्या प्रकाशित की जिसमें ऑटोमन साम्राज्य के पतन की भविष्यवाणी की गई थी। उसकी गणनाओं के अनुसार ये शक्ति 11 अगस्त 1840 को उखाड़ फेंकी जानी थी जब कॉन्स्टेंटिनोपल में ऑटोमन शक्ति के टूटने की अपेक्षा की जा सकती थी और ये मेरा विश्वास है यही बात सिद्ध पाई जाएगी। ठीक उसी निर्दिष्ट समय पर तुर्की ने अपने राजदूतों के माध्यम से यूरोप की मित्र शक्तियों के संक्षंग को स्वीकार किया और इस प्रकार अपने को मसीही राष्ट्रों के नियंत्रण के अधीन कर दिया। ये घटना उस भविष्यवाणी की अक्षरशः पूर्ति थी। जब ये बात ज्ञात हुई तो असंख्य लोग मिलर और उनके सहकर्मियों द्वारा अंगीकार किए गए भविष्यद्वाणी की व्याख्या के सिद्धांतों की सत्यता के सहायाप्रति विश्वस्त हो गए और आगमन आंदोलन को एक अद्भुत प्रोत्साहन मिला। विद्वत्ता और प्रतिष्ठा वाले पुरुष मिलर के साथ उनके विचारों का उपदेश देने और उनके प्रकाशन दोनों में सम्मिलित हो गए और 1840 से 1844 तक ये कार्य तीव्र गति से विस्तृत हुआ। महान संघर्ष 333-323।
पहला स्वर्गदूत 1899 में न्याय के उद्घाटन की घोषणा करता हुआ आया, पर यह संदेश विलियम मिलर की इस पहचान की वैधता पर आधारित था कि बाइबल की भविष्यवाणी में एक दिन एक वर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। उस सिद्धांत की पुष्टि 11 अगस्त 1840 को हुई और पहले संदेश को बल मिला। बाइबल के वर्ष 1843, जो 1844 तक बढ़ा, में मसीह की वापसी की भविष्यवाणी असफल होने पर प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 का दूसरा स्वर्गदूत आ पहुंचा। 1844 के वसंत में भविष्यवाणी के विफल होने पर प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं ने मिलर के एक दिन बराबर एक वर्ष के नियम को अस्वीकार कर दिया और बाबुल की बेटियां बन गईं। इसके बाद 1844 की गर्मियों में जब उसमें आधी रात की पुकार के संदेश का साथ जुड़ा तो उस संदेश को बल मिला। 22 अक्टूबर 1844 को आधी रात की पुकार के संदेश की पूर्ति के साथ तीसरा स्वर्गदूत अपना संदेश लेकर आ पहुंचा। 1863 में लाओदीकियाई एडवेंटवाद की अवज्ञा के कारण परमेश्वर के लोगों को प्राचीन इसराइल के जंगल में भटकने के इतिहास को दोहराने के लिए ठहराया गया। तीसरे संदेश का सामर्थ्य प्रदान 11 सितंबर 2001 तक स्थगित रहा। तीनों में से प्रत्येक संदेश इतिहास में प्रकट होता है और उसके बाद उसे सामर्थ्य प्रदान किया जाता है। यहोयाकीम और कुरुश प्रथम स्वर्गदूत के सशक्तिकरण का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके आगमन का नहीं। यद्यपि यहोयाकीम यहूदा के अंतिम तीन राजाओं में प्रथम था और यद्यपि वो प्रथम स्वर्गदूत के संदेश का प्रतिनिधित्व करता है, तो भी वे भविष्य सूचक विशेषताएं जो वो और साथ ही कुरुश प्रदर्शित करते हैं, ये दिखाती हैं कि वे दोनों प्रथम स्वर्गदूत के सशक्तिकरण के प्रतीक हैं, न कि प्रथम स्वर्गदूत के आगमन के प्रतीक। यहोयाकीम के इतिहास में प्रथम संदेश का आगमन मनश्शे था, जो यहूदा के अंतिम सात राजाओं में प्रथम था। यरूशलेम के पूर्ण और अंतिम विनाश से पहले सात राजा थे। वे सात राजा एक प्रगतिशील इतिहास का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे 1798 से 1 लाख राजा तक का वो इतिहास जिसका वे प्रतिरूप थे। प्रथम स्वर्गदूत 1798 में आया और तृतीय स्वर्गदूत 22 अक्टूबर 1844 को आया। 1798 से 1844 तक का इतिहास प्रथम और द्वितीय स्वर्गदूतों का इतिहास है। तृतीय स्वर्गदूत का इतिहास 1844 में शुरू हुआ जब सिस्टर वाइट प्रकाशित वाक्य के अध्याय 10 की सात गर्जनाओं के प्रतीकवाद की पहचान करती हैं, तो वो कहती हैं कि वे सात गर्जनाएं प्रथम और द्वितीय स्वर्गदूतों के इतिहास का प्रतिनिधित्व करती हैं, पर तृतीय स्वर्गदूत का नहीं।
यूहन्ना को दिया गया विशेष प्रकाश जो सात गर्जनाओं में व्यक्त किया गया था उन घटनाओं का निरूपण था जो प्रथम और द्वितीय स्वर्गदूतों के संदेशों के अंतर्गत घटित होने वाली थी। सेवंथ डे एडवेंटिस्ट बाइबल कमेंट्री खंड 7 पृष्ठ 971।
प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 के सात गर्जन का इतिहास 11 अगस्त 1840 को पहले स्वर्गदूत के सशक्तिकरण से लेकर 22 अक्टूबर 1844 की महान निराशा तक के इतिहास पर बल देता है, परंतु इसके बावजूद इसमें पहले और दूसरे स्वर्गदूत का संपूर्ण इतिहास भी शामिल है। सात गर्जन का सामान्य अर्थ ये है कि वह 1798 से लेकर 22 अक्टूबर 1844 तक का प्रतिनिधित्व करता है। 1798 से महान निराशा तक पहले स्वर्गदूत के आगमन का इतिहास ही पहले और दूसरे स्वर्गदूत का इतिहास है और भविष्य सूचक रूप से इसे सात गर्जन के रूप में दर्शाया गया है। सात गर्जन का प्रतिरूप यहूदा के अंतिम सात राजाओं में भी मिलता है। उन राजाओं में से अंतिम तीन केवल क्रम में आने वाले राजाओं की पहचान भर नहीं थे, बल्कि वे मिलकर प्रथम, मध्य और अंतिम से बना एक ही प्रतीक है। तीन स्वर्गदूतों के इतिहास में पहले संदेश को 11 अगस्त 1840 को सशक्त किया गया और यहोयाकीन तथा कुरुश दोनों उस घटना के प्रतिरूप थे।
हम अगले लेख में इन सबसे महत्वपूर्ण सत्यों की पहचान करना जारी रखेंगे।
हर विद्यार्थी को अटल सत्यनिष्ठा को संजोना चाहिए, हर मन को परमेश्वर के प्रकट वचन की ओर श्रद्धापूर्ण ध्यान से मुड़ना चाहिए। जो इस प्रकार परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, उन्हें ज्योति और अनुग्रह दिया जाएगा। वे उसकी व्यवस्था में से अद्भुत बातें देखेंगे। महान सत्य जो पेंटेकोस्ट के दिन से अनदेखे और उपेक्षित पड़े हैं, परमेश्वर के वचन से अपनी मूल पवित्रता में चमकने वाले हैं। जो सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उन्हें पवित्र आत्मा वे सत्य प्रकट करेगा जो मन से फीके पड़ गए हैं, और वे सत्य भी प्रकट करेगा जो बिल्कुल नए हैं। जो परमेश्वर के पुत्र का मांस खाते हैं और उसका लहू पीते हैं, वे दानियेल और प्रकाशित वाक्य की पुस्तकों में से वो सत्य लाएंगे जो पवित्र आत्मा से प्रेरित है। वे ऐसी शक्तियों को क्रियाशील कर देंगे जिन्हें दबाया नहीं जा सकता। बच्चों के होंठ खुलेंगे और ताकि वे उन भेदों की घोषणा करें जो मनुष्यों के मन से छिपे रहे हैं। प्रभु ने इस संसार की मूर्ख समझी जाने वाली चीजों को बुद्धिमानों को लज्जित करने के लिए और संसार की निर्बल चीजों को शक्तिशालियों को लज्जित करने के लिए चुन लिया है। बाइबल को हमारी पाठशालाओं में इस तरह नहीं लाया जाना चाहिए कि उसे अविश्वास के बीच बीच में ठूंस दिया जाए। बाइबल को शिक्षा का आधार और विषय वस्तु बनाया जाना चाहिए। ये सच है कि हम जीवित परमेश्वर के वचन के बारे में पहले से कहीं अधिक जानते हैं, पर अभी भी सीखने के लिए बहुत कुछ शेष है। उसे जीवित परमेश्वर के वचन के रूप में ही प्रयुक्त किया जाए और हर बात में उसे प्रथम, अंतिम और सर्वोत्तम समझकर आदर दिया जाए, तब सच्ची आत्मिक वृद्धि दिखाई देगी। विद्यार्थी स्वस्थ धार्मिक चरित्र विकसित करेंगे, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र की देह खाते और उसका लहू पीते हैं। परंतु यदि देखभाल और पोषण न मिले तो आत्मा का स्वास्थ्य क्षीण हो जाता है। प्रकाश की धारा में बने रहो, बाइबल का अध्ययन करो। जो परमेश्वर की निष्ठापूर्वक सेवा करते हैं वे आशीषित होंगे। वो जो किसी भी निष्ठावान कार्य को बिना प्रतिफल के नहीं रहने देता, वो निष्ठा और सत्य निष्ठा के हर कार्य को अपने प्रेम और स्वीकृति के विशेष चिन्हों से अलंकृत करेगा। रिव्यू एंड हेराल्ड, 17 अगस्त 1897।